سورة یونس، تھوڑی سی بات سورت پہ کروں گی آیتوں پہ جانے سے پہلے. الحمدللہ ہم سورت توبہ کو پڑھ چکے. اس کی نسبت سورت یونس کا مضمون بہت ہلکا ہے، مکی سورت ہے اور مکی سورتوں میں احکامات نہیں ہوتے بلکہ تین قسم کی بنیادی چیزیں جس کو ایمان ثلاثہ بولتے ہیں، توحید، رسالت اور آخرہ، اس کا تذکرہ ہے. سورۃ یونس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ زیادہ زور ہے اور ایمان والوں کو خوشخبریاں دی جائیں گی. اس صورت میں یا ایھا الناس کا لفظ بہت دفعہ آئے گا، بار بار ہے، بلکہ اگر آپ کاؤنٹ کریں تو میری کاؤنٹنگ کے مطابق 14 دفعہ یا ایھا الناس کا لفظ آتا ہے. قرآن کا بہت تذکرہ ہے، یعنی آپ کہہ سکتے کہ سورۃ یونس کا بنیادی مضمون قرآن ہے. اور قرآن کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی جبکہ مخالفت بہت شدت پہ تھی، اور آپ کو بتایا گیا کہ آپ بغیر کسی فکر کے ساری رکاوٹوں اور ساری مخالفتوں کو ایک سائٹ پہ کرتے ہوئے دعوت اللہ کا کام کرتے رہیں، اور جو لوگ آج اس آواز کو دبانا چاہتے ہیں وہ خود بہت دب جائیں گے. آپ دیکھا جائے تو آج کے دور میں امت مسلمہ کے اوپر حالات کچھ اس سے مختلف نہیں ہیں. اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں اس صورت کا حق ادا کرنے والا بنا دے. اور یہاں سے تیسری منزل بھی شروع ہوتی ہے، قرآن پاک کی صورت نحل تک تیسری منزل ہے. منزل وہ جگہ ہوتی ہے جتنا صحابہ کرام ایک دن میں پڑھا کرتے تھے. 7 دن میں قرآن پاک پڑھنا ہو تو پیچھے جتنا کچھ ہم نے پچھلے 11 دن میں پڑھا ہے اگر، تو آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام صرف 2 دن میں پڑھ لیتے تھے. کیوں؟ کیونکہ جب جو انرجی ملتی ہے، جو ایمان ملتا ہے، اگر اس کو ساتھ ساتھ استعمال کرتے جائیں تو اللہ کے حکم سے اور قرآن پڑھنے کو اور سیکھنے کو دل کرتا ہے. اور ایمان کا سر چشمہ قرآن ہے. جتنا زیادہ آپ قرآن پڑھیں گے، جتنا آپ کا قرآن پاک کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا جائے گا، آپ خود محسوس کریں گے کہ نیکیاں کرنے کی اپنے اندر طاقت زیادہ پائیں گے. آئیے شروع کرتے ہیں. اچھا، سورت کا نام تو یونس ہے، ایسے لگتا ہے کہ حضرت یونس پہ کیسے ہوگا، وہ کیسے تھے، وہ کس طرح کے تھے. تو قوم یونس کی توبہ کا ذکر ہے جو انشاءاللہ سورت کے اینڈ پہ آئے گا، تو وہاں دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت اور دانش سے لبریز ہے. کیا لوگوں کے لیے ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی پر وحی بھیجی کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چکا دے. یا نوٹ کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ان کو عجیب لگتا تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھیجا کیوں ہے اس کو؟ تاکہ غفلتوں میں پڑے ہوئے لوگوں کو چکا دے. آج بھی یہ قرآن یہی کام کرتا ہے. غفلت کو دور کرنے والی چیز قرآن پاک ہے. اور جو مان لے ان کو خوشخبری دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے. کیا پتہ چلا؟ مقام صدقن یا قدم صدقن. یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کو سچی عزت عطا فرماتا ہے. اس کی گواہی آپ دیکھیے کہ کیسے بڑی بڑی شخصیات جو دین کے نام پر دنیا میں محنت اور کوشش کر گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آج تک دنیا میں عزت دی ہوئی ہے. اس پر منکرین نے کہا، یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے. اصل بات کیا ہے کہ ان کو اللہ کی پہچان نہیں. اسی لیے فرمایا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت سلطنت پر جلوہ گر ہو کر کائنات کا انتظام چلا رہا ہے. کوئی شفاعت یعنی سفارش کرنے والا نہیں الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے. یہی اللہ تمہارا رب ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو. پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤگے؟ کیسا پیارا انداز ہے، ہوش میں لانے والا. ہوش میں لانے والی ایک ہی چیز ہے، آیت 4 کا شروع ہائی لائٹ کر لیجئے. الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے. تو کیا کریں پھر؟ ادھر کی تیاری کریں. ہم ساری زندگی جینے کی تیاریاں کرتے رہتے ہیں، جینے کی فکر. اللہ کہتا ہے جانے کی فکر کرو. بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں گے اور دردناک سزا بھگتیں گے اس انکار حق کے جرم میں جو وہ کرتے رہے. اللہم لا تجعلنا منہم. کچھ لوگ حق کو قبول کرتے ہیں اور کچھ حق کے راستے میں اس طرح کے غلط کام کر کے اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. वही है जिसने सूरज को उजाला बनाया और चांद को चमक दी और चांद के घटने बढ़ने की ठीक ठीक मंजिलें मुकर्रर कर दी ताकि तुम इससे बरसों और तारीखों के हिसाब मालूम करो। अल्लाह ने यह सब कुछ बरहक पैदा किया। वो अपनी निशानियाँ खोल खोल कर पेश कर रहा है इन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। हाईलाइट कीजिएगा, आपको इसमें बहुत दफ़ा इल्म की बात भी मिलेगी इंशाल्लाह। यकीनन रात और दिन के उलट फेर में और हर उस चीज में जो अल्लाह ने आसमानों और जमीन में पैदा की निशानियां इन लोगों के लिए जो गलत बीनी और गलत रवि से बचना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि सूरत के शुरू में ही आपको या लमून का तذکرہ मिला। और दूसरी बात देखिए कि यहाँ चांद की मुख्तलिफ मंजिलों की बात है। मुशरिक कल्चर जो होते हैं उनमें सितारों के असरात जिंदगी पर मुरतब होते हैं, ये नजरिया बहुत आम था। वो कहते थे कि जब आप पैदा हुए तो आपकी तारीख पैदाइश बड़ी अहम है। कोई कहता है आप उस दिन तारीख मनहूस थी। इस्लाम में इन चीज़ों का कोई दखल नहीं। फलां रंग आपके लिए मखसूस है, फलां पत्थर आप नहीं पहन सकते, फलां तारीख मनहूस है। और बाज़ मुल्कों में तो आपको कहते हैं कि 13 का अदद बड़ा मनहूस समझा जाता है। मैं खुद एक ऐसे जगह जा चुकी हूँ कि काउंटर्स में से 13 नंबर का काउंटर नहीं था। पूछा क्यों नहीं तो कहा कि लोग इसको मनहूस समझते हैं। लिफ्टों में लिफ्ट नहीं होती। और आप बताइए कि जो पैदा ही बेचारा 13 तारीख को हो गया उसका क्या बनेगा। ये सिर्फ एक बात है, किसी पत्थर किसी रंग ढंग का किसी पे कोई असर नहीं। मैंने आज तक नहीं सुना कोई कहे कि मुझे डायमंड नहीं सूट करता। और कोई कह दे मेरी बेटी को डायमंड सूट नहीं करता शादी में ना लेकर आना। लेकिन बेकार किस्म की चीज़ें, ये शिर्क के मुनाफी है। इन तमाम चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। दूसरी बात आप देखिए कि यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है कि अल्लाह सुबहान ताला दिल की गफलतों को दूर करने के लिए हिदायत का रास्ता जब दिखाता है तो जो लोग इसको मान लेते हैं उनके लिए खुशखबरी हैं और इसके बरक्स एक दूसरा गिरोह। हकीकत यह है कि जो लोग हमसे मिलने की तवक्को नहीं रखते और दुनिया की ज़िंदगी ही पर राजी और मुतमईन हो गए। हाईलाइट कीजिए, एक लाइफस्टाइल है। कुछ लोगों को देखकर लगता है वो सिर्फ दुनिया के लिए जी रहे हैं और उनकी ज़िंदगी ही बस दुनिया में पड़ेगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं इनका आखिरी ठिकाना जहन्नम होगा। इन बुराइयों की पादाश में जिनका इक्तसाब वो अपने इस गलत अकीदे और गलत तर्ज अमल की वजह से करते रहे। तो मुझे आपको क्या करना है, गफलत को दूर करना है। आप देख लीजिए ना आयात ही ना गाफिल हों। आज इंसानों में आपको गाफिल लोग दिखते हैं, अल्लाह ताला उनकी और हमारी गफलतों को दूर करे। इसके बरक्स इन्नल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहाति यहदीहिम रब्बुहुम बीमानिहिम। और ये भी हकीकत है कि जो लोग ईमान लाए यानी जिन्होंने इन सदाकतों को कबूल कर लिया जो इस किताब में पेश की गई हैं और नेक आमाल करते रहे, इन्हें इनका रब इनके ईमान की वजह से सीधी राह चलाएगा। यहाँ रुकिए और हाईलाइट कीजिए, आपको मुझे सिराते मुस्तकीम पे सीधा रखने वाली चीज़ ईमान है। ईमान की कमी बार बार हमें इधर उधर लुढ़का देती है। कई दफ़ा हमारे अंदर शक आता है, कई दफ़ा हम सुस्त होने लगते हैं कहीं कुछ, तो पता क्या चला कि ईमान को बढ़ाएंगे इंशाल्लाह बाकी चीज़ें ठीक होंगी। आप देखिए कि कभी बैटरी लो हो रही हो ना तो चीज़ फिर ऐसे फ्लक्चुएट करने लग जाती है। आप कहते हैं कि चार्जिंग ख़त्म हो रही है, अब ट्यूब ख़त्म हो रही है, अब बिजली कम हो गई है। इसी तरह ईमान कम ज़्यादा जब होता है ना तो उसकी वजह से हमारे अंदर गफलत आने लगती है। तो दुआ क्या करना है कि अल्लाह हमें भी ऐसा ईमान दे जो हमें रास्ता दिखाए। इतना प्यारा ये जुमला है ना कि यहदीहिम रब्बुहुम बीमानिहिम। अल्लाह हमें भी इतना प्यारा सीधा सच्चा खरा ईमान दे दे कि जो हमें जन्नत का रास्ता दिखा दे। कौन सी जन्नत, नेमत भरी जन्नतों में इनके नीचे नहरें बह रही होंगी, वहाँ इनकी सदा ये होगी पाक है तू ए खुदा। और इनकी दुआ ये होगी क्या, वतहियतुहुम फीहा सलाम। पाक है तो ए खुदा, इनकी दुआ ये होगी कि सलामती हो। और इनकी हर बात का खात्मा इस बात पर होगा क्या, वाखिरु दावाहुम अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है। आप देखिए कि जन्नत में जाने वालों की सूरत अल आराफ में भी यही बात पड़ी थी। पहला जुमला क्या होगा, अलहम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदान अली हाजा। और यहाँ क्या, तारीफ। इससे क्या पता चलता है, शुक्रगुजार लोग जन्नत में जाएंगे। दुनिया में भी ऐसे लोग अपने आप को पहचाने। आप अपने ऊपर लें, मैं अपने ऊपर। कोई नेमत मिलती है क्या कहती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी ने आपकी तारीफ की, कोई काम आपसे अच्छा हो गया, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी तारीफ नहीं अल्लाह की तारीफ है। आपसे कोई अच्छा खाना बन गया, कोई कहते अपने खाना इतना अच्छा बनाया, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। ईमान वाला दुनिया में भी हर बात पे अल्लाह के गुण गाता है। तो जन्नत में जाकर भी ये करेगा। और जिसके अंदर अपना आप भरा हुआ है, वही बात याद रखिए, जिसने अपना आप अल्लाह को बेचा है वो तो कहेगा अल्लाह की तारीफ है, और जिसने अपने हाथों में खुद को बेचा है वो कहेगा अल्हम्दुली, सारी तारीफें मेरी, अल्हम्दुली अल्हम्दुली। और जिसने अपने आप को लोगों के हाथों में बेचा है वो क्या कहता है, अल्हम्दुलिन्नास अल्हम्दुलिन्नास, सारी तारीफें लोगों की है। तो सबसे कट कर एक रब के बने, ये है खुशियों का नुस्खा। अगर कहीं अल्लाह लोगों के साथ बुरा मामला करने में इतनी ही जल्दी करता जितनी वो दुनिया की भलाई मांगने में जल्दी करते हैं, तो इनकी मोहलत अमल कभी की ख़त्म कर दी गई होती, मगर हमारा ये तरीका नहीं। अल्लाह बाय फोर्स किसी को हिदायत पे नहीं जमाता, इसलिए हम इन लोगों को जो हमसे मिलने की तवक्को नहीं रखते इनकी सरकशी में भटकने के लिए छोड़ देते हैं। इंसान का हाल यह है कि जब इस पर कोई सख्त वक्त आता है तो खड़े और बैठे और लेटे हमको पुकारता है, मगर जब हम इसकी मुसीबत को टाल देते हैं तो ऐसा चल निकलता है गोया कि इसने कभी बुरे वक्त में हमको पुकारा ही ना था। बात सच है, कभी बच्चों को याद किया करें जब रिजल्ट निकलना होता है उस दिन जो दुआ मांगते हैं। आप देखिए कि दुनिया की कोई कमी पेशी हो या पेपर्स होते हैं, वो बच्चे जो कभी नहीं नमाज पढ़ते उस दिन पढ़ाते हैं, क्यों कि आज पेपर है, रिजल्ट वाले दिन तो और है। यानी जब मुश्किल आती है तो उस वक्त वाकई अल्लाह की ज़रूरत महसूस होती है, लेकिन फलम्मा कशफ़ना अन्हु दुर्रहु, जब तकलीफ चली जाए फिर क्या होता है, ये सोचने की बात है। तो याद रखिए, वो क्या बंदा है जिसको खुशी में रब याद ना रहे, जिसको गम में रब याद ना रहे। तो असल बात ये है कि अल्लाह ताला आपको मुझे अपने से जोड़ दे, हर मौके पे अल्लाह से को पुकारें, और अपने बच्चों की दुनिया बनाते हुए उनकी दुनिया की दुआएं करते हुए आखिरत की दुआएं ना भूल लें। मैंने देखा बच्चों के इम्तिहान होने वाले हों, माओं की जान पे बनी होती है, भाई क्या होगा क्या होगा, फेल हो जाएंगे, नाकाम हो जाएंगे, लेकिन अगर आपके बच्चे आखिरत में फेल हो गए तो क्या होगा, यहाँ तो एक साल फिर और पढ़ लेंगे, सप्ली आ जाएगी, पोस्टपोन रिजल्ट होगा, लेकिन ऐसा ना हो कि हम अपने बच्चों के दुनिया के इम्तिहानों के फिक्र में आखिरत के रिजल्ट की फिक्र भी छोड़ दें। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। और ये मिट्टी के नहीं है, इंसान है, ये बच्चे मिट्टी में मिल जाएंगे। अगर आज हमने दुनिया में इनको अल्लाह की पहचान दी होगी, अल्लाह की मार्फत दी होगी, तो इंशाल्लाह उस रब ने इनकी दुनिया को भी बेहतरीन कर देना है। और दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे बच्चों की दुनिया आखिरत को बेहतरीन कर दे। इसी तरह हद से गुजर जाने वालों के लिए इनके करतूत खुशनुमा बना दिए गए। लोगों, तुमसे पहले की कौमों को हमने हलाक किया जब उन्होंने जुल्म की रविश इख्तियार की, और इनके रसूल इनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आए और उन्होंने ईमान लाकर ही ना दिया। है थे ना नशुक्रे, जिनको नहीं लेना था उन्होंने नहीं लिया। आप देखिए वक्त का नबी कितनी बड़ी हकीकत होते हैं, आगे आप पढ़ेंगे सूरत बैजीना में नबी सल्लम को बैजीना कहा गया, लेकिन जिन्होंने नहीं मानना था उन्होंने अल्लाह के नबी को भी नहीं माना, लोगों ने तो उनके रास्ते में पत्थर बिछा दिए। तो ये नसीब की बात है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इसी तरह हम मुजरमों को इनके जराइम का बदला दिया करते हैं, अब इनके बाद हमने तुमको जमीन में इनकी जगह दी ताकि देखें तुम कैसे अमल करते हो। इसको हाईलाइट करें, लिनंजुरा कैफा अमलून, क्या पता कि यू आर बीइंग वॉच्ड। आपने एक जुमला पाकिस्तान में अक्सर जगहों पे लिखा देखा होगा, कैमरे की आंख आपको देख रही है, लोग उसी से सीधा हो जाते हैं। अगर आप कहें कि अल्लाह आपको देख रहा है, मुझे देख रहा है, हम सब अल्लाह की निगाहों में, अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको मुझे देख रहा है। जब इन्हें हमारी साफ साफ बातें सुनाई जाती हैं, जब इन्हें हमारी साफ साफ बातें सुनाई जाती हैं, तो वो लोग जो हमसे मिलने की तवक्को नहीं रखते, आप नोट कर रहे हैं सूरत में बार बार ये आ रहा है, क्योंकि मुलाकात का यकीन ही तो बंदे से कुर्बानियां करवाता है। कहते हैं इसके बजाय कोई और कुरान लाओ या इसमें कुछ तरमीम कर लो, ऐ नबी इनसे कहो मेरा ये काम नहीं है कि अपनी तरफ से इसमें कोई तगैयर व तबद्दुल या ना तब्दीली करूं, मैं तो बस इस वही का पैरो हूं जो मेरे पास भेजी जाती है, अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो मुझे एक बड़े हौलनाक दिन के अजाब का डर है। और कहो अगर अल्लाह की मशीयत यही होती तो मैं ये कुरान तुम्हें कभी ना सुनाता और अल्लाह तुम्हें इसकी खबर तक ना देता, आखिर इससे पहले मैं एक उम्र तुम्हारे दरमियान गुजार चुका हूँ, क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते, फिर इससे बढ़कर जालिम और कौन होगा जो एक झूठी बात घड़कर अल्लाह की तरफ मंसूब करे या अल्लाह की वाकई आयात को झूठा करार दे, यकीनन मुजरिम कभी फलाह नहीं पाते। इन आयात में आपने एक बड़े बेढंगे मुतालबे का तस्करा पढ़ा, और वो क्या था, एती भी कुरान, आप अगर आयत का नंबर हाईलाइट करना चाहें तो आयत नंबर 15 है, अल्लाह के नबी से एक मुतालबा था और वो क्या था, एती भी कुरान गैरी हाजा और बद्दिल हो। उनको ये कुरान अपनी ख्वाहिशों के रास्ते में रुकावट दिखता था, मन माने तर्ज जिंदगी के रास्ते में रुकावट दिखता था, कहते थे इसको बदल दो, हमें ये कुरान नहीं चाहिए। क्यों? इस कुरान से बहुत पाबंदियाँ लगती हैं। जैसे अभी ताज़ा ताज़ा हम सूरह तौबा पढ़ के आए हैं, उसको पढ़ने के बाद लगता है हाई इट्स टू हार्ड टू बी अ मुस्लिम, मुश्किल बहुत प्रॉब्लम है, इतना कुछ करो फिर अल्लाह राजी होगा, बेहतर यह है कि आप इस कुरान को चेंज करें। नो नो वी डोंट लाइक दिस बुक। कल ये मुतालबे जुबान हाल से थे, आज जुबान कॉल से भी हैं। एक किताब छपी, अगर आपने कभी ऐसी इंग्लिश बुक से फ़ायदा उठाया हो तो एक बड़ी मारूफ किताब है इंग्लिश में, व्हाट काइंड ऑफ इस्लाम डज वेस्ट वॉन्ट, किस किस्म का इस्लाम वेस्ट को पसंद है। उसमें उन्होंने आपको तरीके दिए कि कुरान से ये निकाल दें, ये निकाल दें, वो कर दें, ये कर दें, तो हम आपसे बहुत खुश हैं। क्या करना चाहिए? एक किताब और लिखिए आप, व्हाट काइंड ऑफ वेस्ट डज इस्लाम वॉन्ट। ये है इल्मी जवाब कि किस किस्म का वेस्ट इस्लाम पसंद करता है, आप वो कीजिए। आप देखिए कि हम मुसलमान इंटेलेक्चुअल नहीं रहे, प्रैक्टिकल नहीं रहे, आज खुद इस किताब पे हम शर्मिंदा हैं, आज खुद इन अहकामात पे अमल पे शर्मिंदा है, उनको तो हक पहुंचता है कि वो ऐसा करें। तो याद रखिए, जब तक आप और मैं इस कुरान को एज इट इज नहीं लेंगे, बात नहीं बनेगी। जिसको कितना फिट टू ऑल, सबको फिट हो जाए, नहीं नहीं ये कुरान में फिट नहीं होता, ये काट दो, वो काट दो, ट्रिम कर दो, नहीं, आप अपना वजन कम करें। गुनाहों ने और तकब्बुर ने अगर आपको आउट ऑफ शेप कर दिया, काटिए, खुद को कुरान और सुन्नत के अंदर रखिए। यही एक तरीका है। हर दौर में लोगों ने इस किस्म की ख्वाहिशात रखी, अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको मुझे इस कुरान के मुताबिक अमल करने वाला बना दे, वरना याद रखिए रुसवाई है। और फिर कहूँगी, हर दौर के मुसलमानों के लिए यही इलाज है कि अपने आप को कुरान के तकाजों के मुताबिक ढालें। जब ढाल लेंगे अल्लाह मदद करेगा, जब आप और दूर होंगे अल्लाह और ज़्यादा सख्तियाँ करवाएगा, अल्लाह ताला आपको मुझे अपनी हिदायत से सरफराज करते। ये लोग अल्लाह के सिवा इनकी परस्तिश कर रहे हैं, जो ना इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं ना नफ़ा, और कहते ये हैं कि ये अल्लाह के हाँ हमारे सिफारशी हैं। ऐ नबी, इनसे कहो, क्या तुम अल्लाह को इस बात की खबर देते हो, जिसे ना वो आसमानों में जानता और ना ज़मीन में, पाक है वो और बाला बरतर है इस शिर्क से जो ये लोग कर रहे हैं। आप देखिए कि कितने ज़्यादा खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला बीच में एक आयत कुरान की, नबी की बात, अपनी बात ला रहे हैं। यही कुरान का एक खूबसूरत इम्तिजाज है। आप इसको पढ़ते हुए बोर होते हैं? वैसे बाय द वे मैं आप सबसे भी पूछ रही हूँ, मैं तो नहीं बोर होती, अल्लाह ना करे कभी हूँ, लेकिन मैं सोचती शायद पढ़ने वाला नहीं हो रहा तो सुनने वाले बोर होते हैं। आपको नींद आती है? मुझे तो नहीं आती। चलिए आप भी कुर्सियों पे बैठे हैं, एक तो मैं ये सोचती हूँ अक्सर कि अच्छा मुझे कुर्सी मिली हुई इसलिए मैं नहीं थकती, तो आप जमीन पे बैठे हैं थकते हैं, तो आप तो कुर्सियों पे हैं। कभी एक सेकंड के लिए भी आप देखिए इस पारे के दौरान जो भी हम पढ़ते हैं, एक सेकंड के लिए भी आपके दिल में ये ख्याल आता है क्या वो क्या वर्ड क्या पढ़ रहे हैं, कभी फील भी हुआ? कभी आपने कोई फिल्म देखी हो, कई लोग पढ़ते क्या बोरिंग मूवी है, क्या फजूल है, चले आगे करें, लंबा करें, ये करें, वो करें, कभी आपको इस कुरान को पढ़ के ये लगा? और यकीन कीजिए आप में से कई लोग दसवीं दसवीं दफा दारे कुरान कर रहे होंगे, जो जिस साल से शुरू कर रहे हैं उसको गिन के देख लें, क्या आपको लग रहा है हर साल दारे कुरान सुनते हैं क्या फिर वही चीजें बता रहे हैं? तर्जमा तो वही है और मानी मतलब भी वही है। मैं हदीसें तो नहीं बदल सकती या मैं आपको इसके अंदर से कोई अमल की बातें तो नहीं बदलूंगी, लेकिन एवर न्यू, एवर न्यू, ये इस कुरान की खूबी है क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। जैसे इतने साल से आसमान को देखकर हम नहीं थके ना, कभी बोर हुए, कभी आप सब्जियां खाते हुए बोर हुए, तो कुरान से कभी कोई बोर नहीं होता। अपने दिल को चेक कीजिए, कुरान की महफिल में दिल लगता है कि नहीं? दिल लगता है ये हिदायत पे होने की अलामत है, और अगर दिल नहीं लगता तो दुआ मांगिए कि अल्लाह मेरे दिल को हिदायत पे जमा फरमाए। तीन मौके पे अपने दिल का जायजा लिया करो और उसमें एक मौके कुरान पढ़ते हुए फरमाए, अगर उसको हाजिर ना पाओ तो अल्लाह से कल्बे सलीम मांगो, अल्लाह ताला हमारे दिलों को इसके साथ जोड़ दे। फिर आगे इंसानियत की कुछ बातें फरमाए, इब्तिदा में सारे इंसान एक ही उम्मत थे, वमा कान अन्नास इल्ला उम्मतन वाहिदा फख्तलफू, इब्तदा में सारे इंसान ही की उम्मत थे, बाद में उन्होंने मुख्तलिफ अकीदे और मसलक बना लिए। और अगर तेरे रब की तरफ से पहले ही एक बात तय न कर ली गई होती तो जिस चीज में वो बाहम इख्तलाफ कर रहे हैं इसका फैसला कर दिया जाता। और ये जो वो कहते हैं कि इस नबी पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतारी गई, तो इनसे कहो गैब का मालिक व मुख्तार तो अल्लाह ही है, अच्छा इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। अब अगली आयत की रोशनी में हम अपने अमल को चेक करें। लोगों का हाल ये है कि मुसीबत के बाद जब हम इनको रहमत का मज़ा चखाते हैं तो फौरन ही वो हमारी निशानियों के मामले में चाल बाजियाँ शुरू कर देते हैं। सोचिए कोई तकलीफ, जिंदगी में कोई दुख आया हो, बच्चे की बीमारी, बेटी का घर टूटना, बेटे का कारोबार डूबना, हर एक को आते हैं। उस वक्त जो दिल की हालत, नमाजें, तस्बीहां, तहज्जुदें और न जाने क्या कुछ था, फिर जब हालात बदल गए, फिर वही बेटी अपने घर में जाके बस गई जिसका घर टूटा था, वही बेटा करोड़ों में खेलने लग गया जिसका कारोबार टूटा था, उस वक्त फिर क्या होता, इसको सोचने की बात है। याद रखिए, ये कभी नहीं हो सकता कि आपकी मेरी जिंदगी में कोई तूफान ना आया हो। असल बात है कि उस तूफान के थमने के बाद आप में से मेरे में से कौन अल्लाह से जुड़ा और कौन फिर उल्टी तरफ चल पड़ा। इनसे कहो अल्लाह अपनी चाल में तुमसे ज्यादा तेज है, इसके फरिश्ते तुम्हारी सब मक्कारियों को कलम बंद कर रहे हैं, वो अल्लाह ही है जो तुमको खुशकी और तरी में चलाता है। कहिए कि अल्लाह तू ही चलाता है। आप और मैं कभी अपने चलने पर देखे, देखे यूं खड़े होते हैं ना, दो पाँव नीचे, चप्पू छोटे छोटे और सीधा खड़ा किया हुआ है। इवन जानवरों में देखिए, जो दो टांगों वाले जानवर है जैसे मुर्गी, तो पेट के अंदर टांगे लगी हुई हैं। मेरी आपकी टांगे पेट में होती है और हम यूं तैर रहे होते हैं बैलेंस करने के लिए, सीधी छड़ी की छड़ी खड़ा किया, कौन हमें खड़ा करता है? अल्लाह ताला खड़ा करता है। चलते कैसे? आप जरा चलने पर गौर कीजिएगा, कैसे हम एक कदम उठाते हैं, फिर दूसरा उठता है, फिर घुटना मुड़ता है, फिर सीधा होता है, फिर खुद ब खुद एक दूसरा कदम उठता है। कभी ना चलते अगर अल्लाह ना चलाता। देखिए वो लोग बेचारे जो हैंडीकैप्ड होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उठने के लिए कितना तरसते हैं। तो ये चलना किसके रास्ते में है? ये अल्लाह के रास्तों में चलना है, ये मस्जिदों की तरफ जाना है। अल्लाह ताला हमें इन नेमतों की कदर की तौफीक दे। चुनाचे जब तुम कश्तियों में सवार होकर बादे मुवाफिक यानी मुखालिफ हवा पर बहुत खुशी के साथ सफर कर रहे होते हो, फिर अचानक मुखालिफ हवा का जोर होता है और हर तरफ से मौजों के थपेड़े आने लगते हैं और मुसाफिर समझ लेते हैं कि तूफान में घिर गए। इस वक्त सब अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस करके उसको पुकारने लगते हैं। ऐसे ही होता है ना कि अगर तूने हमको इस बला से निजात दे दी तो हम शुक्र गुजार बंदे बनेंगे, मगर जब वो इनको बचा लेता है तो फिर वही लोग हक से मुनहरिफ होकर जमीन में बगावत करने लगते हैं। कितनों की ये कहानी है, खुशियों में रब याद नहीं रहता, दुखों में आप देखिए बहुत आसान होता है। मैयत वाले घर में देखिए, सब नमाजें पढ़ रहे हैं, रो रहे हैं, मर्द उधर हैं, औरतें इधर हैं, कोई उसमें पंप एंड शो नहीं, ग्लैमर नहीं। और जब वही घर खुशी वाले घर में बदलता है तो कहते हैं अब ये क्या हुआ और वो क्या हुआ। तो अल्लाह ताला की इन चीज़ों पे गौर करना है, इसलिए अगली आयत को हाईलाइट कीजिए, बहुत ज़्यादा शऊर को बेदार करने वाली आयत है। या अय्युहन्नासु इन्नमा बग्युकुम अला अन्फुसिकुम, लोगो तुम्हारी ये बगावत तुम्हारे ही खिलाफ पड़ रही है। कौन सी बगावत? जो खुशियों में बगावत करते हैं, रेबेलियस, ट्रांसग्रेशन, आपे से बाहर होते हैं। और बाज लोग तो वल्लाह ही खुशी के नाम पे कहते हैं कि अल्लाह तुझे नाराज करके हम खुश होंगे, और ऐसा रवैया होता है कि जैसे शायद अल्लाह से अब कभी काम ही नहीं बढ़ना। अल्लाह ताला में खुशियों में बगावत से बचाए। दुनिया की जिंदगी के चंद रोजा मजे हैं, लूट लो, फिर हमारी तरफ तुम्हें पलट कर आना है। इस वक्त हम तुम्हें बता देंगे कि तुम क्या करते रहे हो। कितनी दफा ये जुमला आया है, क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो, अल्लाह देख रहा है। रह गई ये दुनिया, बड़ी प्यारी आयत है दुनिया की हकीकत को समझने के लिए। दुनिया की ये जिंदगी जिसके नशे में मस्त होकर तुम्हारी निशानियों से गफलत बरत रहे हो, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे आसमान से हमने पानी बरसाया तो जमीन की पैदावार जिसे आदमी और जानवर सब खाते हैं खूब घनी हो गई, फिर ऐन उस वक्त जबकि जमीन अपनी बहार पर थी और खेतियां बनी सबरी खड़ी थी और इनके मालिक समझ रहे थे कि अब हम इनसे फायदा उठाने पर कादिर हैं। यकायक रात को या दिन को हमारा हुक्म आ गया और हमने इसे ऐसा गारत करके रख दिया कि गोया कल वहां कुछ था ही नहीं। इस तरह निशानियां खोल खोल कर पेश करते हैं इन लोगों को जो सोचने समझने वाले हैं। तुम इस नापायदार जिंदगी के फरेब में मुब्तला हो रहे हो और अल्लाह तुम्हें दारुस्सलाम की तरफ दावत दे रहा है। हिदायत इसके इख्तियार में है, जिसको वो चाहता है सीधा रास्ता दिखा देता है, जिसको वो चाहता है सीधा रास्ता दिखा देता है। जिन लोगों ने भलाई का रास्ता इख्तियार किया, इनके लिए भलाई है और मजीद फजल। इनके चेहरों पर रुस्याही और जिल्लत ना छाएगी। वो जन्नत के मुस्तहिक हैं, जहां वो हमेशा रहेंगे। और जिन लोगों ने बुराइयां कमाई, उनकी बुराई जैसी है वैसा ही वो बदला पाएंगे। जिल्लत इन पर मुसल्लत होगी, कोई अल्लाह से इनको बचाने वाला ना होगा। इनके चेहरों पर ऐसी तारीकी छाई हुई होगी जैसे रात के स्याह पर्दे इन पर पड़े हुए हों। वो दोजख के मुस्तहिक हैं, जहाँ वो हमेशा रहेंगे। जिस रोज हम इन सब को एक साथ अपनी अदालत में खड़ा करेंगे, फिर इन लोगों से जिन्होंने शिर्क किया है कहेंगे, ठहर जाओ तुम भी और तुम्हारे बनाए हुए शरीक भी। फिर हम इनके दरमियान से अजनबियत का पर्दा हटा देंगे और इनके शरीक इनसे कहेंगे, तुम हमारी इबादत तो नहीं करते थे? हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह की गवाही काफी है। तुम अगर हमारी इबादत करते भी थे तो हम तुम्हारी इस इबादत से बिल्कुल बेखबर थे। इस वक्त हर शख्स अपने किए का मजा चख लेगा। फिर नोट करें, सब अपने हकीकी मालिक की तरफ फेर दिए जाएंगे और वो सब झूठ जो उन्होंने घर रखे थे गुम हो जाएंगे। यहाँ पे बात पूरी हुई जो शुरू हुई थी दुनिया के धोखे से। आयत नंबर 24 जो हमने पढ़ी है, इसके ऊपर एक लेक्चर है, मुझे बजाते खुद बहुत पसंद है। सीडी बनी एक दफ़ा, उसकी बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ। जिंदगी एक ढलता साया के नाम पे, लाइफ इज़ अ फेडिंग शेडो। मैं चाहूँगी कि ज़रूर आप उससे फ़ायदा उठाएं। इस पूरी मिसाल में अल्लाह ने इस दुनिया की मिसाल एक बारिश और ज़मीन की ऊपर पड़ने वाली बारिश और फसल से भी है। देखा जाए तो हम और हमारी औलादें भी तो ऐसे ही हैं ना। एक बच्चा दुनिया में आता है, कितना खूबसूरत होता है, मासूम भोला सा। फिर वक्त के साथ साथ बड़ा होता है, ज़रा सा बड़ा होता है, और जब जवान औलाद होती है, कितनी नज़रें उस पर लगी होती हैं। माँ की भी उम्मीदें, बाप की भी उम्मीदें, और एकदम रातों रात अल्लाह का हुक्म आता है और खड़ी फसल कट के रह जाती है। कभी किसी के जवान बच्चे को दुनिया से जाते देखा हो? ये आयतें आपको मुझे यही दिखा रही हैं। किसी वक्त ये खेती कट सकती है, अल्लाह ईमान के साथ काटे। ज़रूरत इस बात की कि हम इस दुनिया से अपने और अपने बच्चों की आखिरत को सिक्योर करके जाएं। आप देखिए कि दुनिया में अल्लाह ने सब दिखा दिया और अल्लाह कहते हैं, वल्लाहु यदु इला दारिस सलाम। अगर किसी को किसी महफिल में दावत मिले कि आपको वहाँ जाना है, ये है वो है, इंसान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। किसी ने मुझे बुलाया है, किसी बहुत बड़े होटल का नाम लिखा हो और आपसे कहा जाए कि आपको वहाँ इनवाइट किया गया, पर ये नहीं बताया किसने दावत दी है, पहुँच जाएँ। और जब आप वहाँ पहुँचें तो आपका होस्ट अल्लाह हो और वहाँ अल्लाह ताला आपका रास्ता देख रहा है, अल्लाह ताला आपको इस्तकबालिये पे मिले, कितना खूबसूरत वो मंजर होगा। ये हर उस इंसान के साथ होने वाला है जिसने इस जिंदगी को शऊर के साथ गुजारा, जो इस दुनिया के धोखे में ना पड़ा, जिसने इस दुनिया में रहकर अपने आप को अल्लाह की मर्जी का बना लिया। आखरत में जब वहां पहुंचेगा तो अल्लाह ताला उस बंदे को जरूर ही वेलकम कहेगा। कितने दिन की मुश्किल, 4 दिन की, गुजर गई, गुजर जाएगी, कोई मुश्किल नहीं रहती। लेकिन क्या वजह है कि हम इतनी खूबसूरत बातों को सुनने और इन हिकमतों को जानने के बावजूद अमल नहीं कर पाते? उसकी एक बहुत बड़ी वजह पीयर प्रेशर, मुआशरे का दबाव। लोग क्या चाहते हैं, लोग कैसे हैं, तो कीजिए क्या? पीयर प्रेशर को गॉड प्रेशर में बदलें, अल्लाह का प्रेशर महसूस करें। ये कहने की बजाय कि मैं मर गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा, ये कहिए कि ये मर गए तो इनका क्या होगा। और हर जवान को सोचना इन आयतों के ऊपर। असल बात यह कि आज इस दुनिया में इस वक्त को अपनी करेंसी को कन्वर्ट कर लें नेकियों की सूरत में और कल अल्लाह के यहाँ पहुँच जाएं, वरना याद रखिए कि वहाँ जहन्नुम का कूड़ा बन के रहना पड़ेगा। अल्लाह ताला आपके मेरे लिए अमल करना आसान कर दे। कोई एग्जामिनर हाथ पकड़कर आपको जवाब नहीं लिखाता, कोशिश आपने मैंने खुद करनी है। अल्लाह भी हमें ये खूबसूरत आयतें देकर देख रहा है कि हम अब अमल कैसे करेंगे। अब इसके साथ ही तौहीद की कुछ बातें जो मेरे आपके लिए बहुत खूबसूरत तरीके से अमल को आसान करती हैं। और मैं आपको सच्ची बात कहूँ, जब तक अल्लाह की मार्फत नहीं है, इनमें से किसी बात पे अमल नहीं होगा, ना कुछ करेंगे ना रुकेंगे। जिस चीज को आप अपने और अपने बच्चों के दिलों में पुख्ता कर लें वो तौहीद है, मारफत, हुब्बे इलाही, अल्लाह की मोहब्बत डाल दें। आप देखिएगा खुद ही पूछ पूछ के जिएंगे कि अल्लाह बता हम क्या करें। आइए पढ़ते हैं, कुल मैं यरज़ुकुकु मिनस समाई वल अर्दी, इनसे पूछो कौन तुमको आसमान और जमीन में से रिस्क देता है। अब हम आप भी पूछें, अपने आप से भी पूछें और दूसरों से भी पूछें, जवाब तुम सबको ही पता है, कौन देता है रिस्क? अल्लाह रिस्क देता है। ये समात और बिनाई की कुव्वतें किस किस के अख्तियार में? हर जुमले पे सोचिए, मेरी आंखें किसके हुक्म से देख रही हैं, मेरे कान किसके हुक्म से सुन रहे हैं? कौन बेजान में से जानदार को और जानदार में से बेजान को निकालता है? जवाब दीजिए आप साथ ऊंची आवाज से, अल्लाह। कौन इस नज़्म आली की तदबीर कर रहा है? वो जरूर कहेंगे कि अल्लाह। कहो फिर तुम हकीकत के खिलाफ चलने से परहेज नहीं करते? तब तो यही अल्लाह तुम्हारा हकीकी रब है, फिर हक के बाद गुमराही के सिवा और क्या बाकी रह गया? आखिर तुम किधर फिराए चले जा रहे हो? इसको हाईलाइट करें। जब सब कुछ अल्लाह करता है तो तुम उसकी तरफ क्यों नहीं जाते? तुम उसकी मर्जी के क्यों नहीं बनते? तुम उसके साथ अपने मामले को दुरुस्त क्यों नहीं करते? असल बात यह है कि आपको मुझे ये सारी चीजों को अपनी जिंदगी में लाना है। इसीलिए अल्लाह ताला अगली आयत में क्या फरमाते हैं, कज़ालिका हक्कत कलिमतु रब्बिका अल्लज़ीना फसकू। ए नबी देखो इस तरह नाफरमानी इख्तियार करने वालों पर तुम्हारे रब की बात सादिक आ गई। क्या कि वो मान कर ना देंगे? तड़प के कही अल्लाह ये बात हम पर ना सादिक आ जाए, कि तू कह दे इन्होंने पढ़ना है सुनना कोई नहीं, मानना कोई नहीं, ये सुनाएंगे मानेंगे नहीं, ये सुनेंगे ये मानेंगे नहीं। क्या पता चला सुन के मानता वही है जिसके दिल में अल्लाह की बड़ाई होती है। इनसे पूछो तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों में कौन है जो तखलीक की इब्तदा भी करता हो और फिर इसको दोहरा भी दे? कहो वो सिर्फ अल्लाह है जो तखलीक की इब्तदा भी करता है और इसको दोहराएगा भी, फिर तुम ये किस उल्टी राह पर चलाए जा रहे हो? कोई माँ बच्चा पैदा कर सकती है और पैदा हुए बच्चे को मौत से कोई बचा सकता है? नहीं बचा सकता। ये सब शऊर से टकराने वाले सवाल है। हर सवाल के जवाब में दिल में कहिए कि अल्लाह तू ही ये काम कर सकता है। इनसे पूछो तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों में कोई ऐसा भी है जो हक की तरफ रहनुमाई करता हो? कहो वो सिर्फ अल्लाह है जो हक की तरफ रहनुमाई करता है। फिर भला बताओ जो हक की तरफ रहनुमाई करता है वो इसका ज्यादा मुस्तहिक है कि इसकी पैरवी की जाए, या वो जो खुद राह नहीं पाता इल्ला ये कि इसकी रहनुमाई की जाए? आखिर तुम्हें क्या हो गया, कैसे उल्टे उल्टे फैसले किए जाते हो? क्या पता चला भटके हुओं के पीछे चलेंगे ना तो खुद भी भटक जाएंगे। दुआ कीजिए अल्लाह में उसके पीछे चलाए जो खुद हिदायत पे हो। हकीकत यह है कि इनमें से अक्सर लोग महज कयास और गुमान के पीछे चले जा रहे हैं, हालांकि गुमान हक की जरूरत को कुछ भी पूरा नहीं करता। जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह इसको खूब जानता है। हकीकी इल्म के मुकाबले में गुमान, आज हमारी उम्मत का इल्म क्या है? गुमान, शक, ऐसे ही। हाँ उसने कहा, बुजुर्गों ने कहा, आपने एक जुमला सुना होगा बचपन से हम सुनते हैं, इकबाल जरी कितने मशहूर है, हिकमत की बातें, कुरान कितना आम है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जो हकीकी इल्म नहीं हासिल करेगा वो गुमान से करेगा। आप देखिए जो खाना पकाती है ना सिस्टर, बहुत नाप तोल से सीखती हैं, बहुत अच्छा बनाती हैं। कुछ लोग अंदाजों से काम करते हैं, कभी अच्छा बन गया कभी बुरा बन गया। तो जिंदगी की इतनी बड़ी हकीकत को कभी गुमान पे ना रखिए। फरमाया कुरान की बात है थोड़ी सी, वमा काना हाजल कुरान युफ्तरा मिन दूनिल्लाह, और ये कुरान वो चीज नहीं जो अल्लाह की वही और तालीम के बगैर तसनीफ कर लिया जाए। ये छोटी चीज नहीं है, इसको इसकी रिस्पेक्ट दो, इस कुरान की इज्जत करो। बल्कि ये तो जो कुछ पहले आ चुका था इसकी तस्दीक और अल किताब की तफसील है। इसमें कोई शक नहीं कि ये फरमा रवाए कायनात की तरफ से है। अपने कुरान को छू कर कहें कि अल्लाह हमें इस बात का यकीन है। क्या ये लोग कहते हैं कि पैगंबर ने इसे खुद तसनीफ कर लिया? कहो अगर तुम अपने इस इल्जाम में सच्चे हो तो इस एक सूरत जैसी तुम भी तसनीफ कर लो, और एक खुदा को छोड़कर जिस जिस को बुला सकते हो मदद के लिए बुला लो। असल ये है कि जो चीज इनके इल्म की गिरफ्त में नहीं है, जिसका माल भी इनके सामने नहीं आया, यानी जिन्होंने चखी नहीं उनको पता क्या लगे ये क्या खूबसूरत चीज है, इसको उन्होंने ख्वाम खा अटकल पच्चू जुटला दिया, इसी तरह तो इनसे पहले के लोग भी जुटला चुके हैं। फिर देख लो इन जालिमों का क्या अंजाम हुआ, इनमें से कुछ लोग ईमान लाएंगे और कुछ नहीं, और तेरा रब इन मुफसिदों को खूब जानता है। अगर ये तुझे झुटलाते हैं तो कह दो मेरा अमल मेरे लिए और तुम्हारा अमल तुम्हारे लिए, जो कुछ मैं करता हूँ इसकी जिम्मेदारी से तुम मुबर्रा हो, यानी इसकी जिम्मेदारी से तुम बरी हो, और जो कुछ तुम कर रहे हो इसकी जिम्मेदारी से मैं बरी हूँ। क्या पता चला, इस कुरान से फ़ायदा सिर्फ उसको होता है कि जो इस किताब को अल्लाह की किताब समझे, और मुझे आपको भी किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए। पैगाम दे दीजिए और इसके बाद जो जितना इससे फ़ायदा उठा ले उतना ले ले। इनमें से बहुत से लोग हैं जो तेरी बातें सुनते हैं, मगर क्या तू बहरों को सुनाएगा, हाँ वो कुछ ना समझते हों। इनमें से बहुत से लोग हैं जो तुझे देखते हैं, मगर क्या तू अंधों को राह बताएगा, ख्वाह इन्हें कुछ ना सोचता हो। हकीकत यह है कि अल्लाह लोगों पर जुल्म नहीं करता, लोग खुद ही अपने ऊपर जुल्म करते हैं। आज ये दुनिया की जिंदगी में मस्त हैं, और जिस रोज़ अल्लाह इनको इकट्ठा करेगा तो यही दुनिया की जिंदगी इन्हें ऐसी महसूस होगी गोया ये महज एक घड़ी भर आपस में जान पहचान को ठहराए गए थे। सोचिए अपनी उम्र जरा सोचिए, क्या लगता है आपको बहुत साल हो गए दुनिया में आए हुए? ऐसे पलक झपकने में गुजर गई, अगली भी ऐसी गुजर जाएगी। असल वो है कि आखिरत जो खत नहीं होनी वो हमारे सर पे खड़ी होगी, और अभी वहां जाके ऐसे ही लगेगा कि जैसे बस पहचान हुई थी। गोया ये महज एक घड़ी भर आपस में जान पहचान को ठहरे थे। इस वक्त तहकीक हो जाएगा कि फिल वाक़े सख्त घाटे में रहे वो लोग जिन्होंने अल्लाह की मुलाकात को झुटलाया और हरगिज वो राह रास्त पर न थे। जिन बुरे नतायज से हम इन्हें डरा रहे हैं, इनका कोई हिस्सा हम तेरे जीते जी दिखा दें या इससे पहले ही तुझे उठा लें। बहरहाल इन्हें आना हमारी तरफ है, और जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह इस पर गवाह है। कितनी खूबसूरत आयते हैं। इसीलिए अब आगे देखें, हर उम्मत के नबी की बात हुई, हर उम्मत के लिए एक रसूल है। फिर जब किसी उम्मत का रसूल इसके पास आ जाता है तो इसका फैसला पूरे इंसाफ के साथ चुका दिया जाता है, और इस पर जर्रा बराबर जुल्म नहीं किया जाता। कहते हैं, कौन कहते हैं जो अल्लाह के नबी के गिर्द थे, अगर तुम्हारी ये धमकी सच्ची है तो आखिर ये कब पूरी होगी? कहो मेरे इख्तियार में तो खुद अपना नफा व जरर भी नहीं, सब कुछ अल्लाह की मशीयत पर मौकूफ है। हर उम्मत के लिए मोहलत की एक मुद्दत है, जब ये मुद्दत पूरी हो जाती है तो घड़ी भर की तकदीमो तखीर नहीं होती। इनसे कहो कभी तुमने ये भी सोचा कि अगर अल्लाह का अजाब अचानक रात को आ जाए, जरा सोचिए आप भी, या दिन को आ जाए तो तुम क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते, हम सिर्फ वहां बेबस हो जाएंगे। आखिर वो ये कौन सी चीज है जिसके लिए मुजरिम जल्दी मचा रहे हैं? क्या जब ये तुम पर आ पड़े उस वक्त तुम इसे मानोगे? कैसे हथौड़े बरसाती भी आते हैं, अब बचना चाहते हो हालांकि तुम खुद ही इसके जल्दी आने का तकाजा कर रहे थे। फिर जालिमों से पूछा जाएगा, अब हमेशा के अजाब का मजा चखो, जो कुछ तुम कमाते रहे हो इसकी पादाश के सिवा और क्या बदला तुमको दिया जा सकता है? आप देखिए, इतनी बड़ी हकीकत को सुनकर अगर किसी का दिल ना खुले तो किसका दिल खुलेगा? अल्लाह ताला से दुआ है कि इस कुरान को हमारे दिल की बहार बना दे। फिर पूछते हैं, क्या वाकई ये सच है जो तुम कह रहे हो? मेरे रब की कसम ये बिल्कुल सच है, यानी उनको यकीन ही नहीं आता था कि क्यामत आएगी, और तुम तो इतना बलबूता भी नहीं रखते कि इसे जहूर में आने से रोक दो। अगर हर उस शख्स के पास जिसने जुल्म किया रुए जमीन की दौलत भी हो तो इस अजाब से बचने के लिए वो इसे फिदिये में देने पर आमादा हो जाएगा। जब ये लोग इस अजाब को देख लेंगे तो दिल ही दिल में पछताएंगे, मगर इनके दरमियान पूरे इंसाफ से फैसला किया जाएगा और कोई जुल्म इन पर न होगा। क्यामत के दिन कोई जुल्म नहीं होगा। असल बात यह कि मुझे आपको आज इसकी फिक्र करनी है कि हम इस दुनिया में अल्लाह की मर्जी के साथ जीते हैं कि नहीं। सुनो, आसमानों और जमीन में जो कुछ है वो अल्लाह का है। सुन रखो कि अल्लाह का वादा सच्चा है, मगर अक्सर इंसान जानते नहीं। वही जिंदगी बख्शता है और वही मौत देता है, और इसी की तरफ तुम सबको पलटना। अब अगली आयत आपकी और मेरी पसंदीदा आयत है। आप में से जो भी नूरुल कुरान की वेबसाइट को विजिट करते हैं आपको वहाँ एक आयत लिखी हुई दिखती होगी, वही आयत इस वक्त हमारे सामने है। कुरान पाक क्या क्या खूबियों का मजमू है। या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम वशिफ़ाउल लिमा फिस्सुदूर। आपको और मुझे अल्लाह पुकारा है, लोगो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आ गई, आई अब तक पहुंची है। ये वो चीज है जो दिलों के अमराज की शिफा है। है कोई आप में से बीमार बैठा हुआ? ये कुरान शिफा है, और जो इसे कबूल कर लें उनके लिए रहनुमाई और रहमत है। ए नबी कहो, ये अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी है कि ये चीज उसने भेजी, इस पर तो लोगों को खुशियां मनानी चाहिए, ये इन सब चीजों से बेहतर है जिन्हें लोग समेट रहे हैं। तीन खूबियां बड़ी बड़ी, कुरान क्या है? मौइज़ा, शिफा, हुदन व रहमा, चार काम करती है ये आयत। और मुझे लगता है कि आप में से हर एक ने वो लेक्चर जरूर ही सुना हुआ है, कुरान मेरे दिल की बहार। इतना हल्का फुल्का सा वो लेक्चर है कि जिसको वाकई जहां भी प्ले किया गया दिलों के ताले खुलने लगे। मैं कुछ नहीं कहती, आप उसको सुन के देखें। ये कुरान दिल की बीमारियों की दवा, ये कुरान है जो हमें अल्लाह ताला कहते हैं हर उस चीज से बेहतर है जो तुम लोगों के पास है। क्या कुछ है आपके मेरे पास? दुनिया समेटते हैं ना, ये दुनिया की हर दौलत से बेहतर है। अल्लाह हमें इस कुरान को समेटने वाला बना दे। आज इस कुरान को थामते हैं ना तो साथ ही हम पे सवाल आते हैं, क्या क्या मुश्किल है। कितने लोग हैं जो इस कुरान पढ़ने वाले को मुबारक दें? मुबारक हो, फल यफरहू, खुशियां मनाओ, मुबारक हो तुमको अल्लाह ने इस कुरान के लिए चुन लिया। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में दाखिलों पे बच्चों को खुशियों के साथ मुबारक देते हैं। अल्लाह करे वो मुआशरा आ जाए कि कुरान पढ़ने वालों को मुबारकें मिलने लग जाए। ए नबी, इनसे कहो तुम लोगों ने कभी ये भी सोचा है कि जो रिस्क अल्लाह ने तुम्हारे लिए उतारा था इसमें से तुमने खुद ही किसी को हराम और किसी को हलाल ठहरा लिया? इनसे पूछो, अल्लाह ने तुमको इसकी इजाजत दी थी या तुम अल्लाह पर झूठ बांध रहे थे? जो लोग अल्लाह पर ये झूठा इफ्तरा बांधते हैं इनका क्या गुमान है कि क्यामत के रोज इनके साथ क्या मामला होगा? अल्लाह तो लोगों पर मेहरबानी की नजर रखता है, मगर अक्सर ऐसे लोग हैं जो शुक्र नहीं करते।